केणु संग खेलू होली, केणु संग खेलू होली। पिया त्यज गए हैं अकेली, केणु संग खेलू होली। पिया त्यज गए
ओम शांति। एक रात एक चोर वृंदावन में घुसाया और कई गोपियों के घर से चोरी हो गई। सुबह हुई तो गोकुल में कोलाहल था। सब गोपियां कह रही थी मेरा ये चोरी हो गया, मेरा वो चोरी हो गया। कोई कह रही थी मेरा ऐसा चला गया, मेरा वो चला गया। सब दुखी थी, हरेक के घर से कुछ ना कुछ चोरी हुई थी। और वो चोर जिसने ये सारी चोरियां की थी, वो सारा सामान चोरी का लेकर जब अपने स्थान पर पहुंचा और एक एक चीज को खोलने लगा तो बड़ा निराश हुआ। जिस जिस गोपी के घर वो गया, उसने देखा कि ऊपर एक कपड़े में बांध के कुछ रखा हुआ है। उसको लगता है जरूर कोई बहुमूल्य हीरा, कोई जवाहरात, कोई वस्तु होगी, इसलिए वो सारी पोटलियां ले लेकर आ जाता है। और जब अपने स्थान पर पहुंचता है, एक एक पोटली खोलता है, एक पोटली, उसके अंदर दूसरी पोटली, तीसरी पोटली, और उसके अंदर क्या मिला उसे? शंख का एक टुकड़ा। वो दूसरी थैली खोलता है कि उसमें कुछ मिलेगा, एक दो तीन, सोचता है जरूर कुछ बहुमूल्य होगा, पंख का एक टुकड़ा। तीसरी पोटली खोलता है, पोटली के अंडर पोटली, थैली के अंदर थैली और लगता है अब कुछ मिलेगा इसमें, मटकी का एक टुकड़ा। बहुत उदास होता है, कैसी चोरी की, कुछ भी नहीं मिला। और एक थैली खोलता है, थैली के अंदर थैली, एक पीले रंग का कपड़ा पीतांबर टुकड़ा। बहुत उदास होता है और वो सब लेके सुबह सुबह वहीं गोकुल में आता है, तो देखता है ये गोपियां क्या कर रही है, सब दुखी है, सब विलाप कर रही है। कोई कहती है मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया। वो चोर वहां जाता है और वो कहता है कि कल रात जो चोरी हुई वो मैंने की। वो सभी गोपियां इतनी खुश होती है, घर घर से अपने हीरे जवाहरात लाकर देती है, कहती है ये लो हीरे जवाहरात, मेरा पंख दे दो। मेरी मटकी का टुकड़ा दे दो, कोई कहती है, कोई कहती है मेरा शंख का टुकड़ा दे दो। उसे आश्चर्य होता है ये कैसे पागल लोग हैं, हीरे की सोने की के कंगन उतार उतार कर उसको दे रही है, ये लो पर हमारी चीज हमको वापस दो। वो पूछता है आखिर इन चीजों का क्या महत्व, ये तो सब टूटी फूटी चीजें हैं। गोपिया कहती है किसी जमाने में श्री कृष्ण यहां रहते थे और वो हमको छोड़ के सदा के लिए चला गया, और ये उसकी यादें हैं। ये उस मटकी का टुकड़ा है जो मैं ले जा रही थी और उसने तोड़ी थी, ये उसके पंख का टुकड़ा है, ये उसके शंख का टुकड़ा है। गोपियों का ऐसा प्रेम देखकर भाव विभोर हो जाता है वो चोर। कृष्ण का ध्यान करते करते गोपियां कृष्णमयी हो गई है। कृष्ण गाती गीते कृष्ण ध्याति चित्ते, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते, कृष्ण का स्मरण करते करते, कृष्ण जैसी हरकतें करने लगी, जब उद्धव आता है गोपियों को समझाने, अरे तुम क्या कर रही हो, कृष्ण तो अवतार है, कृष्ण तो भगवान है। वो कहती है कौन भगवान कौन अवतार, हमें कुछ पता नहीं, कृष्ण तो यहां हमारे साथ खेला था, यहां हमने उसके साथ रास रची थी, यहां उसने बांसुरी बजाई थी, एक एक पकड़ पकड़ कर उद्धव को दिखा रही है, यहां यहां यहां। उसे आश्चर्य होता है कितने पागल लोग हैं ये। उद्धव 6 मास वहां रहता है और आखिर में पराजित हो जाता है गोपियों के अथाह प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि उद्धव के पास तो प्रेम ज्ञान की गर्मी थी पर यहां तो गोकुल में प्रेम की आग लगी थी, आग प्रभु प्रेम की आग। क्या ऐसी आग, ऐसा प्रभु प्रेम हमारे हृदय में भी है, ईश्वरीय प्रेम, जिस प्रेम में आत्मा डूब जाए, ऐसी उसके रंग में ऐसी रंग जाए कि फिर सब जगह वही दिखाई दे। संत लिखता है काम क्रोध निमले ठाई चे झाला स्वयमेव पांडुरंग, स्वयं ही वो कृष्ण रूप हो गया है। ये भक्तों के अनुभव है, जो भक्ति में ऐसे चूर थे कि उनको उस परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और अब भगवान स्वयं आया है, अपने रंग में रंगाने के लिए। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, कौन किसको देखने आया है, कौन आया है किसको देखने? होलीएस्ट और हाईएस्ट बाप आया है, किसको देख रहा है? होली और हैप्पी बच्चों को। तो आज की मुरली होली पर है। मीरा कह रही है, हे गोविंद मैं किसके साथ होली खेलूं, तुम मुझे छोड़ के चले गए हो, कैसा प्रेम है भक्तों का, क्या किया है तुमने, किसी और के साथ प्रीत लगा दी और मुझे छोड़ दिया, तुम और संग प्रीत जोड़ी, प्रभु जज गए हो अकेली, केनु संग खेलू होली, अब किसके साथ मैं होली खेलू, भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ये वैभव अच्छे लगते, ना ये भोजन अच्छा लगता है, ना ये ऐशो आराम अच्छा लगता है, ना मनुष्य अच्छे लगते, केवल तुम ही अच्छे लगते हो बस, भोजन भवन भलो नहीं लागे। तो ऐसा प्रभु प्रेम हमारे हृदय में भी जागृत हो जाए। आज सुबह की मौन वाणी, बाबा ने कहा जब बाप मिल गया तो किसी की आवश्यकता नहीं, ना किसी प्राप्ति की आवश्यकता है, ना किसी खजाने की आवश्यकता है, ना किसी और ज्ञान की, ना किसी और गुण की, ना किसी और शक्ति की, ना किसी संबंध की, सब कुछ उस एक में समाया हुआ है, उस एक में ही सर्वस्व है, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। जीसस क्राइस्ट के शिष्य उससे पूछते हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कहां रहेंगे, वो कहता है सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड इज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अन टू इट, पहले भगवान और भगवान के राज्य को प्राप्त करो, ये संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएगी, पहले भगवान को पाओ ये सब ऐड हो जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा, पोजिशन मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सब अपने आप मिलेगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगा। सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले उस परमात्मा के राज्य को प्राप्त करो, उसे प्राप्त करो, वो मिल गया तो सब मिल जाएगा, और वो नहीं मिला और केवल संसार को पाने की कोशिश की तो ना संसार मिलेगा और ना भगवान, दुविधा में दो गए, न माया मिली न राम, कोई भी नहीं मिला। तो आज की मुरली होली के दिन चली है, और हर मुरली में बाबा होली के नए नए राज बताते हैं, तो आज की मुरली में होली के सात राज बताए हैं बाबा ने। बाप त्रिमूर्ति है, तुम्हें दिव्य राज समझाते हैं होली के, पहले तो कहा तीन और फिर और एक बात करते करते सात बातें बता दी, पहले कहा मैं तुम्हें तीन राज बताता हूं क्योंकि बाप त्रिमूर्ति है, और फिर जोड़ते गया मुरली में, तो जो भी अव्यक्त वाणियां हैं उनमें गहरे राज हैं, जो भी अव्यक्त वाणियां हैं भगवान के महावाक्य है वो सारे, एक एक वाक्य कितने रुपए का है, कितने का है, अनमोल है, वो भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वाक्य है। गोपिया श्री कृष्ण की महिमा करती है भागवतम तव कथामृतम, हे गोविंद हे केशव हे माधव हे कृष्ण, तेरे जो वचन है, तेरी जो वाणी है, तेरी जो कथा है, तू जो बोलता है, तव कथामृतम अमृत है, तप्त जीवनम हमारा जीवन तप रहा है, कवि विरडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, हे गोविंद हे केशव तेरी वाणी अमृत है और हम तप रहे हैं, कल्मशापम कल्मश विकारों के कलंक लगे हैं माथे पर, धोने वाली है तेरी ये वाणी, इस कलमश को, इस कलंक को, इस काली माँ को, इस काली को। श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से श्रवण मंगलम होता है। श्रीमदादतम भुविकृणंत ते, कवि भिरडितम, कवियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने, सन्यासियों ने, भक्तों ने जिस वाणी का वर्णन किया है, हे माधव यो तेरी वाणी है, वो भगवान की वाणी है। तव कथामृतम, अमृत है वो। भगवान का एक एक महावाक्य अमृत है, जीवदान देने वाला है, प्यास बुझाने वाला है जन जन की। तो इस मुरली में होली के दिव्य राज सुनाए बाबा ने। सबसे पहला राज, सात बातें बताई है। सबसे पहला, वो संसार के लोग क्या करते हैं, होली का जलाते हैं। शास्त्रों में कहानी दिखाई है प्रह्लाद की, बहुत परीक्षाएं होती है, जब हर बार वो बच जाता है तो होलिका आती है, जिसको वरदान है कि आग उसे जला नहीं सकती, प्रह्लाद को लेकर बैठती है, परंतु क्योंकि उसने ब्रह्मा के वरदान का गलत प्रयोग किया, वो खुद जल गई, प्रह्लाद बच गया। तो होली क्यों मनाई जाती है, जलाई जाती है, जलाते हैं। बाबा ने कहा तुम होली मनाते हो, तुम्हारा जलाना अर्थात क्या, पुराने स्वभाव संस्कारों को जलाना, भस्म कर देना। वैसे अब वो जीवन रहा ही नहीं, वो कोई और जन्म था, किसी और जन्म का था, अब हमारा नया जन्म है। तो होली मनाना अर्थात जला देना, आग लगाना, आग। आग में सब जल जाए, सब कुछ पुराना, विकार, संस्कार, पाप, विकर्म, स्वभाव, दृष्टि, वृत्ति, आग जलाती है चीजों को, भस्म हो जाए, राख हो जाए। और उस राख को भी नहीं रखना, जाकर समुद्र में डाल देना, पता नहीं राख से भी कभी कभी वापिस लौट आ जाए, ऐसे भयंकर भूत है। तो होली का पहला अर्थ जलाना, होली का दूसरा अर्थ रंग में रंगना। किस रंग में रंगेंगे, परमात्मा रंग में रंगेंगे। वो लोग तो रंग लगाते हैं, उससे पता नहीं कितना नुकसान होता है, कितनी एलर्जिक रिएक्शंस होती है, कितनों का चेहरा खराब होता है, कितने कपड़े खराब होते हैं, कितनी साबुन और कितना पानी और कितना रंगों की वेस्टेज, वो सब होता है उधर। यहाँ हम कौन से रंग में रंगते हैं, परमात्मा रंग में रंगते हैं, ईश्वरीय रंग में। जैसे वो ज्ञान सूर्य है, हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं। जैसे वो गुणों का सागर है, जैसे वो शक्तियों का सागर है, वो गुण, वो शक्ति, वो ज्ञान हम में आने लगता है। ये दूसरा राज, रंग में रंग जाना है। दो रंग एक हो जाए, पता नहीं चलता है फिर बाद में कौन सा कौन है, ऐसे रंग में रंग जाए वो और हम एक लगने लगे। तुका मने होती दुझी माझी एक ज्योति, उसकी और मेरी ज्योति जैसे एक हो गई है, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, ऐसा अनुभव। जीसस क्राइस्ट से पूछा जाता है तुम कौन हो, वो कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर पुत्र हूं। कहीं और उसको दूसरी जगह पूछा जाता है तुम्हारे पिता कहाँ है, वो कहता है माई फादर दैट आर्ट इन हेवन, वो स्वर्ग में है। पूछा जाता है स्वर्ग का, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन मी, विद इन यू, स्वर्ग अंदर ही है। फिर कोई प्रश्न पूछता है तुम्हारा और तुम्हारे पिता का क्या संबंध है, वो कहता है माई फादर इज इन मी एंड आई एम इन माई फादर, मेरे पिता मुझ में है और मैं उसमें हूं, यह दूसरी अवस्था है। पहला कहता है मैं ईश्वर पुत्र हूं, वो पिता है, मैं पुत्र हूं, अलग अलग है। दूसरी जगह कहता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। तीसरी जगह फिर पूछा जाता है पर तुम्हारे पिता है कहाँ, तुम्हारा वास्तविक संबंध क्या है। और बाइबल का एक महावाक्य है जिसकी वजह से जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, वो कहता है माय फादर एंड आई आर वन, मेरे पिता और मैं एक ही हूं। लोगों ने कहा धर्मग्रानी धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, स्वयं को भगवान कहते हो। पर ये अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं चेतना की। पहली द्वैतवाद, वो अलग मैं अलग, वो परमात्मा मैं आत्मा। और जैसे जैसे आत्मा आगे आगे बढ़ती अध्यात्म मार्ग में, पता चलता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। किसने बनाया भगवान को सर्वव्यापी? हमने ही अभी बना दिया। और तीसरी अवस्था है माय फादर एंड आई आर वन, वो और मैं अब एक नहीं रहे, अलग अलग नहीं रहे, हम दोनों एक हो गए, बाप समान। तो तीन मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग, एक सन्यास का मार्ग, तीसरा ब्रह्मा कुमारी। पहला है भक्ति का मार्ग, भक्त भक्त करते 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 स्वयं ही भगवान जैसा बन जाता है। गोपिया गोपिया नहीं रही, वो कृष्ण जैसे बन गई, भक्त भगवान जैसा बन जाता है। दूसरा मार्ग सन्यास का, समाधि लेते लेते एक ज्योति हो जाती है। और तीसरा मार्ग जो बाबा ने बताया है वो है जिसमें आत्मा परमात्मा समान बन जाती है। इसी की झलक द्वापर से सन्यास और भक्ति मार्ग में दिखाई दी, जहां पे मिलन की आस थी, किसी ने समाधि में ढूंढा, किसी ने भक्ति में ढूंढा, पर यहां की झलक वहां दिखाई दी द्वापर से। तो आत्मा की सबसे गहरी प्यास कौन सी है? मिलन की। तो दूसरा होली का अर्थ क्या हुआ? रंग में रंग जाना। जैसे वो है वैसे हम, जैसे वो देखता है वैसे हम देखे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, तुम कहते हो तुम्हारा बाप से प्यार है, तुम कहते हो तुम्हारा बाप से प्यार है। जिसका जिसके साथ प्यार है उसको उसके साथ रहना चाहिए। मैं रहता हूं ऊपर, तुम नीचे क्यों? तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों? तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, मैं हूं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? तो दूसरा अर्थ भगवान के रंग में रंग जाना, तीसरा मिलन मनाना। होली में क्या करते हैं लोग? मिलन मनाते हैं। यहां तुम्हारा भगवान के साथ श्रेष्ठ मिलन होता है। आज सुबह की अव्यक्तवाणी क्या करते हो तुम? भगवान के साथ श्रेष्ठ मिलन मनाते हो। यह मिलन बहुत यूनिक है, बहुत अद्भुत है, विचित्र है। और यह मिलन केवल अमृत वेला ही नहीं, यह मिलन केवल मधुवन में जाकर ही नहीं, यह मिलन निरंतर मनाते रहना। मैं उससे अलग हो ही नहीं, आज की मुरली में है ना, हम बाप से अलग हो ही नहीं सकते। एक बाप एक मैं, बस। बाबा ने कहा कई पर्दे के पीछे से चूहा बिल्ली तो नहीं निकल आती है, आज है ना सुबह, और कोई ना हो। तो तीसरा अर्थ होली का, संसार में एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, और यहां पर भगवान से मिलते हैं। चौथा अर्थ लाइट मूड। क्या कहा बाबा ने सुबह? कि होली में सब हल्के हो जाते हैं, लाइट रहते हैं, भारीपन नहीं रहता है। वैसे तुम भी होली हैप्पी लाइट मूड में रहते हो, यह तुम्हारी होली है। हल्का रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में भारी करने वाली हजार चीजें आती है, एक एक चीज भारी कर देती है। अभी यहां बैठे हैं, किसी ने कहा यहां से उठो पीछे बैठो, पीछे बैठे, पीछे से किसी ने कहा यहां से उठ के उधर बैठो, हो गया, क्लास रह गई बाजू में, भट्टी रह गई बाजू में, अभी इसको देखता हूं क्या करना है इसका। खुद तो कुछ सुनते नहीं, हमको भी सुनने नहीं देते, ये सब इधर रह गया, माया चालू। तो जला देना है अपने अंदर के सभी विकारों को, भस्म करना है। ये कितना अच्छा अभ्यास है कि दिन भर में जहां जहां अग्नि जलती है उसको थोड़ा देर देखना है, अग्नि को, और देखना है मेरे सारे विकर्म इसमें भस्म हो रहे हैं। महात्मा बुद्ध के पास यदि कोई आता था दीक्षा लेने, वो कहते थे जाओ पहले 3 मास शमशान घाट में रहो, 3 मास तक शमशान घाट में एक ही काम करना है, कौन सा, सुबह से लेकर रात तक चिताओं को जलते देखना है। कैसे बचा पाओगे वैराग से अपने आप को, सब भस्म हो रहा है, सब कुछ अनित्य है, यहां आग देखनी है, आग, आग की लपटें उठ रही है, भस्म कर रही है। तो पहला आग, दूसरा रंग, रंग में रंग जाना अर्थात अपने योग को बढ़ाना, जैसा वो है उसके गुणों का चिंतन करते रहना, जिसके गुणों का चिंतन करते रहेंगे हम धीरे धीरे उसके जैसे बनते जाते। तीसरा, मिलन मनाना, बार बार मिलन मनाना। चौथा, हल्का रहना। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी कला कौन सी है, हल्के रहने की कला। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है बोल दिया, हर बात को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, कहेंगे, हम किसी के भी मुंह पर पट्टी नहीं लगा सकते कि हमें कोई कुछ नहीं कहना, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है क्या कि हमने कोई अच्छा काम किया और सबने हमारी तारीफ की, ऐसा होगा, कोई ना कोई तो निकलेंगे 5-100 में से जो दोष निकालेंगे, कितना भी अच्छा करो। वो दिखाया है ना, शंकर जी और पार्वती नंदी बैल को लेकर जा रहे हैं, लोग कहते हैं कैसे मूर्ख दाम्पत्य है, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे। शंकर जी को लगता है अरे बात तो सही है, दोनों बैल के ऊपर बैठ जाते हैं दूसरे गांव में, लोग कहते हैं अरे रे रे रे, मूक प्राणी पर जरा भी दया नहीं है, मारोगे क्या उसको, दोनों बैठ गए। शंकर जी को लगता है ये क्या कर दिया, पार्वती को बिठाते खुद चलने लगते। लोग कहते हैं कैसी पत्नी है, पति परमेश्वर पैदल चल रहे और खुद बैठी है आराम से, पार्वती जी को ग्लानी होती है, वो बैठती है और पति को बिठाती है। लोग अगले गांव में कहते हैं कैसा पति है, धर्म पत्नी पैदल चला रहा है और खुद बैठा है आराम से, कैसा पति है निर्दयी। वो सोचते हैं अब क्या करें। शंकर जी बैल के 2 पैर पकड़ते हैं और पार्वती जो 2 पैर और ऊपर उठा के दोनों ले जाते हैं। लोग कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग आज तक हमने नहीं देखे। कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। जब ज्ञान में चलते हैं तो नाम लोग विरोध करते हैं, ब्रह्मा कुमारी में चले गए और ज्ञान को छोड़ दिए तब भी विरोध करते हैं, देखा छोड़ दिया ना, पहले ही बोला था, बस यही रही तुम्हारी धारणा, अब जिसको पकड़ा है उसको पकड़ के रखना चाहिए ना, हमने बोला तो क्या हुआ, इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं। एक कुमार था जिसको उसके मां ने ज्ञान में लाया और वो ज्ञान में ऐसा आया कि एकदम पक्का हो गया, अब गड़बड़ चालू हो गई क्योंकि माता जी को बहू चाहिए थी और कुमार ने कहा बिल्कुल अब तो मैं शादी करने वाला नहीं हूं, अब तो मैं पूरा जीवन कुमार जीवन बिताऊंगा। मां ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे बहू चाहिए, और जबरदस्ती उसकी शादी कराई और उसने भी की मां की खातिर, और फिर बहू आई खतरनाक डेंजर, रोज झगड़े, तेज तर्राक, इतने झगड़े इतने झगड़े इतने झगड़े। बेटे ने मां से कहा, देखा तुमने ही बोला था ना शादी करने के लिए। मां ने कहा, बोला तो मैंने था पर की तो तुमने ना, इच्छा तो तुम्हारी भी थी। सारा डाल दिया बेटे के सिर पर। तो इस दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हमें कुछ ना कहे, कुछ भी करो, कुछ भी, ज्ञान में चलो तो भी विरोध, ज्ञान को छोड़ दिया तो भी विरोध, और इस संसार में सहन तो करना पड़ेगा। तुका मने संत सोसी जगाचे आघात, संत वो है जो जगत के आघात को सहन करता है। तो हल्के रहना है, भारी नहीं हो जाना है। उसने हमको ऐसा क्यों बोला, हम इतने खराब है क्या? उसके बोलने से क्या होता है, भगवान क्या बोल रहा है वो सुनो। भगवान कहते तुम महान आत्मा है, वो कहता है तुम बिल्कुल महान नहीं हो। तो रात भर बैठ के रंगोली निकाली फंक्शन के लिए, सुबह सुबह कोई आके कहता है कौन है ये, कितनी फालतू रंगोली है, मूड ऑफ, उदास, रूठना, नाराज, अब नहीं निकालेंगे इसके बाद, पहले तो रात भर जागो और उसके बाद ये सुनो, आज के बाद कभी नहीं निकालेंगे, हम जा रहे बाय टाटा। मुरलियों में आता है, अरे बाबा, कहते अरे मैंने क्या किया, तुम बहन जी से रूठ गए और मुझसे क्यों छोड़ के जा रहे हो, मुझे क्यों छोड़ते हो, मेरा क्या दोष है। हल्के रहना ये कला है, हर चीज को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, अभी माताओं के लिए प्रश्न है, पिछले एक मास में एक बार भी जो नहीं रोया वो हाथ खड़ा करेंगे जरा, एक बार भी नहीं रोया? अरे बाप रे, सब रोए, ये तो सब रोने वाले को बाबा क्या कहते हैं, विधवा, सुपर विधवाएं भी है यहां पर, जो दिन भर रोती रहती है, कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करेंगे, कोई नहीं? एक महीने में जो बिल्कुल नहीं रोया वो हाथ खड़ा करेंगे माताओं में से, एक बार भी नहीं रोया, जरा भी नहीं, दुख भी नहीं हुआ, हाथ धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब बाकी सब रो रहे थे। अरे रे रे रे, बाबा कहेंगे मैं जिंदा हूं, ये सब विधवा हो गई, कमाल है। फीलिंग देवी छुई मुई, छुई मुई नहीं बनना है, हाथ लगाया मुरझाया। अच्छा, भाइयों में से कोई भाई बोलते हम रोते नहीं, हम रुलाते हैं दूसरों को, रोने का काम हमारा नहीं है भाई, मन से रोते, आंसू नहीं आते, मन में रोते, दुख करते। तो रोना, दुख करना, उदास होना, मूड ऑफ होना, अर्थात होली मनाई नहीं, होली अर्थात लाइट, आज की मुरली में चौथी बात। तो लाइट रहने का अभ्यास, लाइट रहने का पुरुषार्थ, हल्का रहने का पुरुषार्थ। चीजें हो रही है, चीजें जा रही, आ रही है, जा रही है, इतना ध्यान रखना है, पकड़ के कुछ भी नहीं रखो। अगर ये रस्सी है, इसको मैं जोर से पकड़ता हूं तो यहां लाल लाल हो जाता है, छोड़ू तो ठीक होगा। जिसने अपने अतीत को, अपने पास्ट को जितना जोर से पकड़ के रखा है वो उतना घायल है। छोड़ते जाओ, लेट गो, छोड़ दो। वस्तुओं को पकड़ा है, घटनाओं को पकड़ा है, व्यक्तियों को पकड़ा है, उनके शब्दों को पकड़ के रखा है, उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा और सबके सामने कहा था, अपमान, भूला नहीं है। देखता हूं अवसर मिल गया तो बदला जरूर लूंगा। चीजें आ रही है जा रही है, छोड़ दो, पकड़ के रखना है तभी हल्का रहेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है बोल दिया, बेचारा खुद भी तो दुखी होगा। और अच्छा है ना उसने बोला, अंदर समाया हुआ था, हल्का हो गया वो, इसलिए बोल दिया, बोलने दो। हम क्यों भारी हो रहे हैं? किसी ने हमको रात में कुछ कह दिया और हम रात भर सो नहीं पा रहे उसकी वजह से। सुबह वो आके कहता है, अरे मैंने तो ऐसे ही जोक में बोल दिया था, वहां पर हमारी तो नींद चली गई, रात चली गई पूरी तुम्हारे जोक की वजह से। उसने अपने आप को हल्का कर लिया, हम अपने आप को भारी क्यों करें? और बोलना लोगों का स्वभाव है। कल भी कहा था संत ज्ञानेश्वर के बारे में, क्या कहा था उसकी माँ ने, इतना सहन करना पड़ता है, इतना सहन करना पड़ता है, गुजरते हैं भीख मांगते, लोग कहते देखो सन्यासी का बेटा आ गया। और एक बार तो उसकी पूरी थैली फाड़ दी किसी ने, पैरों के नीचे कुचल दी। वो आके कहता है दुख तरी किती सहन कराए सर, कितना दुख सहन करूं। माँ क्या कहती है, समाधाना ने दुख सहन करने हित तपश्चर्या है। समाधान से दुख को सहन करना यही क्या है, तपस्या है। यही तो तपस्या है। किसी वन में जाकर भूखे प्यासे रहना तपस्या बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, पर यहां पर संसार में रहते हुए सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ते जाना, यही तपस्या है। ये चौथा, पांचवा आज की मुरली से होली का राज, समानता। होली में छोटे बड़े सब लोग समान होकर खेलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब कुछ छोटे बच्चों के साथ खेलते। वैसे तुम्हारी ये तुम्हारा यादगार है। किसका यादगार है? तुम्हारी आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि है, इसका यादगार भक्ति मार्ग में होली के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि तुम सबको समान देखते हो। ये सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा की संतान। मुरलियों में आया है शिव बाबा, कभी कहते हैं मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, सारे विश्व का बाप हूं, ऐसा मत समझना मैं केवल तुम्हारा बाप हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं। समान, क्या समानता हम में है? नहीं, मोह भरा है। जैसे एक माँ, उसका बेटा स्कूल से आया ही नहीं है, 2 बजे स्कूल बंद होती है, अभी 4 बज रहे वो नहीं आया, वो चिंतित है क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा। निकलती है घर से बाहर, ढूंढने लगती है मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, पूछती है। ऐसा बेटा देखा, जूते पहने थे, स्कूल की ड्रेस थी, टाई थी। कोई कहता है हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। वो जाती है जाती है जाती है और किससे पूछती है, कोई कहता है हाँ अभी अभी देखा, एक छोटे बच्चे का वहां एक्सीडेंट हो गया है। उसको इतनी आघात पहुंचता है, इतनी चिंता होती है, भाग के जाती है, भीड़ लगी हुई है, एक छोटा सा बच्चा घायल पड़ा हुआ है। वो पूछती है कितनी उम्र का होगा, वो कहता है 12 साल, मेरा बेटा भी तो 12 साल का है। जाती है भीड़ को चीरते हुए बच्चे को देखती है और फिर मेरा नहीं है, अब शांति मिली, मेरा नहीं है, किसी और का है। मेरे को कुछ हो गया तो दर्द होता है, तो समानता कहाँ है? भगवान हमको इन छोटी हदों से ऊपर उठा रहे हैं, सब समान। कितनी ऊंची दृष्टि है ये, सब आत्माएं, और मैं भी आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई लगाव नहीं, ये लक्ष्य है। बाबा ने किसी मुरली में कहा था, अगर किसी देहधारी से दिल लगाया तो जहन्नुम में जाओगे। किसी से कुमारी किसी की भी याद ना आए, माताओं को कितनी मुरलियों में कहा है, माताएं नष्टोमोह हुई है, किसी की याद तो नहीं आती है, मोहजीत बनी है, मोहजीत राजा की कथा है, किस किस को याद करोगे? सब धोखे देने वाले हैं यहां पर, हर एक धोखा देगा जिस जिसको याद किया और जिससे दोस्ती की। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त हमारा सगा कोई नहीं, लिख के रखना है इसको। सब पराए हैं, सौतेले, एक ईश्वर के अतिरिक्त हमारा अपना इस संसार में कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं उनसे नफरत करनी है, प्यार करना है सबसे, पर ऊपर ऊपर से प्यार करना है, ऐसे हाथ घुमा देना बस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। असली प्यार किससे करना? बाबा से, और दुनिया से ऐसे ऐसे हाथ घुमा देना थोड़ा थोड़ा बस, ऊपर ऊपर से समानता। अगली पॉइंट, पिचकारी। उधर पिचकारी का प्रयोग करते, बाबा कहते तुम्हारी दृष्टि की पिचकारी है, इससे रंग चलाओ। कौन से? खुशी के, ज्ञान के, प्रेम के, आनंद के, शक्तियों के, गुणों के, इससे आत्माओं को रंग दो अपनी दृष्टि से। भक्ति मार्ग में तीन प्रकार की दीक्षा है। पहली नयन दीक्षा, केवल गुरु अपने नयनों से ही शिष्य को जागृत कर देता है। दूसरी है स्पर्श दीक्षा, हाथ लगाता है और जागृति आ जाती है। तीसरी है मंत्र दीक्षा, उसके कान में मंत्र फूंक देता है। ये तीन प्रकार की दीक्षा है। इसके लिए वहां पर भी नयनों का महत्व है, आंखों के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर करना। यहां पर भी बाबा कहते हैं तुम्हारे नयन जो है ये पिचकारी है, इसमें रूहानी रंग भर दो, रूहानी दृष्टि से की पिचकारी से आत्माओं पर रंग छिड़को, ये काम करना है पिचकारी। अपनी दृष्टि को उसके लिए बहुत प्योर बनाना पड़ेगा। ये आंखें केवल आत्मा देखे बस, शरीर बहुत देख लिया, शरीर से बहुत खेल लिए। लास्ट संडे की मुरली थी, तुम रत्न हो। जब मिट्टी से खेलते हो तो बाप दादा को हंसी आती है, रत्न हो, रत्नों से खेलो, मिट्टी के कणों से क्यों खेलते हो? पिचकारी क्या करना है? पिचकारी से रंग डालने आत्माओं पर, गुलाब बाशी रंग छिड़कने आत्मिक प्रेम के। संसार में शरीर के प्रेम की दुर्गंध है, हर एक देह से प्यार करता है, बस शरीर और शरीर की वासनाओं में पागल है। क्या ऐसी दुर्गंध वाली पृथ्वी पर फिर से प्रेम का सौरभ, सुगंध, महक हम फैला सकते हैं? यह अभ्यास करना है तो अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना है। कैसे बनाएंगे शुद्ध? बाबा से दृष्टि लेकर लंबा लंबा समय बाबा से दृष्टि लेना है, उसकी वो पवित्रता का सागर इधर आते रहे, भर जाए आंखों में, नैनों में, तो पिचकारी। और सबसे आखिरी पॉइंट कौन सी बताई आज की मुरली में? होली के बारे में और एक बात है, कौन बताएगा? हाँ, कौन सी पॉइंट? सबने मुरली सुनी आज? थोड़ी थोड़ी सुनी क्या? क्या बीती को बीती, पास्ट इज पास्ट, होली हो गया। बाबा ने कहा अब उसको याद मत करो, ये वो दिन है जब पुराने दुश्मनी भी भूल जाते हैं लोग, तुम क्यों याद करते? जो हो गया वो हो गया, अब नई दिन है, नया रात है, नया सब कुछ, नया उमंग, नई मुरली, नया उत्साह। ये उत्सव का युग है, ये संगम युग है, उत्सव मनाओ। हर दिन दिवाली है और हर दिन होली है। विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपवाड़ी। संत कहते हैं कि भगवान के राज्य में हमको नित्य ही दिवाली ही दिवाली है। हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन न्यू ईयर, हर दिन शिवरात्रि, हर दिन स्वतंत्रता दिवस है। पास्ट, अतीत, चाहे किसका कितना भी दर्दनाक हो, अब उसको फुल स्टॉप लगाना है। तो ऐसी सात बातें थी आज की मुरली में, सात होली के रहस्य। कुछ और बातें भी थी, बेफिक्र बादशाह, मौजों का युग है, जाओ ढूंढ कर लाओ किसी को, तुम्हारे जैसा कोई मौज में है तो बाप के सामने लाओ, कोई नहीं, मैं बाबा का बाबा मेरा, कोई तीसरा ना हो, चूहा बिल्ली ना निकले पर्दे के पीछे से। तो अभी एक योग का अभ्यास करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। पास्ट इज पास्ट, इसमें दो काम करने हैं। पहला काम, जिसने हमें इस जीवन में दुख दिया है, जिसने हमको बहुत हर्ट किया है, सताया है, अपशब्द बोले हैं, षड्यंत्र किए हमारे विरुद्ध, हमारी टांग खींची है, अविश्वास किया है, विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, बहुत तड़पाया है, हमारे ऊपर तंत्र मंत्रों के प्रयोग किए हैं, आसुरी शक्तियों का प्रयोग हम पर किया है, हर तरह से हमको गिराने की कोशिश की है, हमारी जिन्होंने कंप्लेंट की है, आंखों के सामने उन सभी लोगों को लाना है, सभी आत्माएं, और उनको क्या कर देंगे, माफ, क्यों, ताकि वो और करते रहे, क्यों माफ कर दे, हाँ क्यों माफ करना है लोगों को, क्योंकि हम कौन है, हम पूर्वज है, हम कौन है, हम दाता है, हम कौन है, हम बड़े हैं, क्यों माफ करना है लोगों को, क्योंकि हमको हिसाब चुकतू करना है, क्यों माफ करना है हमको लोगों को, हम रहम दिल है, क्यों, हम क्षमा का सागर है, इसलिए हमको माफ करना है, और मास्टर क्षमा का सागर है, और हमें बाप समान बनना है, इसलिए माफ करना है लोगों को, और हम दयावान हैं, हम कृपालु हैं, बस हम ही दया करते रहे, और वो अत्याचार, हम भलाई करें वो बुराई करें, हाँ जो देंगे वही पाएंगे, और क्यों माफ करना है लोगों को, क्यों माफ करना है, हम दादा के बच्चे हैं, और हल्का होने के लिए, हमें खुद हल्का होना है, अपने लिए हम माफ कर रहे हैं क्योंकि हम भारी है, इसलिए हम उसको माफ कर रहे हैं, और हमने उसको बहुत दुख दिया था इसलिए उसने दिया, माताएं बाप से कहती है बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है, बाबा कहते हैं तुमने भी मारा होगा, हमें माफ करना है, उसका एक फाइनल आंसर है, और वो है तुम सभी को माफ कर दो क्योंकि ये बाप की आज्ञा है, क्यों माफ कर दो, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है, इट्स माय ऑर्डर, बाकी सब भूल जाओ, क्या फायदे हैं और क्या हो रहा है, ये मैं कहता हूं तुमको, इसलिए माफ कर दो। तो पहला अभ्यास क्या करेंगे, उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमको दुख दिया उसको हम माफ, कैसे माफ, बेशर्त, अनकंडीशनल पार्डन, शर्त नहीं कि तुम ऐसा करो तो माफ करूंगा, जिसने जो कुछ किया है सब हमारा ही हिसाब किताब था, चुप तू हो गया, माफी। दूसरा काम करना है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना है जिसको हमने बहुत तड़पाया, बहुत अपमान किया, जिनके विरुद्ध हमने षड्यंत्र किए, अपशब्द बोले, सहयोग नहीं दिया, और क्या क्या किया उनके साथ, धोखा दिया, उन सब आत्माओं को इमर्ज करके क्या करेंगे उनसे, और वो कहेंगे हम नहीं करतेंगे, जा तो क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे माफ करो माफ करो, वो कहते हम नहीं करेंगे, जाओ तो क्या करेंगे, पीछे पड़ जाना उनके भूत के जैसे, कर देंगे एक दिन। तो ये दो अभ्यास करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे, खुला खुला बैठ जाएंगे। ओम शांति। इस अनादि सृष्टि चक्र में मैं एक पूर्वज आत्मा हूं, इस सृष्टि का आदि स्तंभ हूं, रहम के सागर शिव बाबा की संतान, मास्टर रहम का सागर हूं। स्थूल शरीर को छोड़ मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा सम्मुख भगवान की वरदानी दृष्टि अब मैं आत्मा अपने सम्मुख उन आत्माओं को इमर्ज कर रही हूं। जिन्होंने इस जीवन में मुझे शायद बहुत दुख दिया, अपशब्द बोले, सताया, गलत व्यवहार किया, षड्यंत्र किए, मैं आत्मा, मैं पूर्वज आत्मा इन सभी को बेशर्त माफ करती हूं। अब इनके प्रति मेरे मन में कोई विरोध नहीं, कोई वैर नहीं, ये मेरा ही हिसाब किताब था इनके साथ जो अब चुकतू हो रहा है। इन्होंने जो कुछ किया वही सत्य था और वही होना चाहिए। बहुत अच्छा जो मेरे सारे हिसाब इनके साथ अब चुक्त हो गए। मैं इन सभी आत्माओं को अब तहे दिल से गले लगाती हूं। ये सब मेरे मित्र हैं। दूसरी ओर मैं देखती हूं ये कौन असंख्य आत्माएं आंखों के सामने खड़ी हो गई है, क्यों इतनी क्रोध में दिख रही है। ये वो आत्माएं हैं जिनको मैंने बहुत सताया, दुख दिया, रुलाया, पीड़ित किया, झगड़ा किया, अपमानित किया। हे देव कुल की महान आत्माओं, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अज्ञानवश विस्मृति वश मुझसे जो पाप हुए उसके लिए मुझे क्षमा करो। और मैं देख रही हूँ अब ये सभी आत्माएं खुश हो रही है जैसे कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। मैं आत्मा एकदम लाइट हो चुकी हूँ, कोई बोझ नहीं। इस संसार की सभी आत्माएं मेरे मित्र हैं। मैं फरिश्ता वापस धीरे धीरे अपने स्तन में प्रवेश करता हूं। शांति।